会喜欢我的车，任何车如果我的车能够平静悦色。
अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदस्तिः तथा एव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूराः मद् अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः लिखना भी है नहीं भाषण पर लिख लो हे आचार्य साधका हे आचार्य अब हमारी सेना में तो हिंदी लिखी सके तो भी लगते हमारी सेना में जो जो प्रधान है उनको आप जान लीजिए। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन किसको कह रहा है? द्रोणाचार्य को, अपने गुरु शस्त्र विद्या के जो गुरु है उनको कह रहे हैं कि हे आचार्य अब हमारी सेना में जो जो प्रधान है उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनके बारे में मैं कहता हूँ। श्लोक नंबर 8। सबसे पहले तो आप स्वयं और पितामह भीष्म कर्ण और युद्ध में विजयी ऐसे कृपाचार्य है और आपके पुत्र अश्वत्थामा विकर्ण और आपके पुत्र अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है। नायिका तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए और मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले कमा युद्ध में चतुर युद्ध में चतुर वीर अपनी सेना में है। मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले कौमा युद्ध में चतुर वीर अपनी सेना में है। देखते हैं अगर फिर टाइम होगा तो आगे कुछ लोग करेंगे। देखो यहाँ पर विजयोत्तम कहा है, किसको कहा है? विजयोत्तम, हे विजयोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ये द्रोणाचार्य कौन थे? ब्राह्मण थे ना, गुरु भी थे, ब्राह्मण भी, ब्राह्मण थे ना द्रोणाचार्य। लेकिन ब्राह्मण हमको देखो, इसमें से हमको ये सीखना है कि भगवान की दृष्टि से ब्राह्मण कौन है। द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, लेकिन उनको ब्राह्मण अध्यात्म की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से उनको ब्राह्मण नहीं माना गया। भगवान ने आगे हमको चौथे अध्याय में कहने वाले हैं कि स्वभाव और गुण के अनुसार मैंने चार विभाग किए हैं। स्वभाव और गुण के अनुसार हमने चार विभाग किए हैं। जन्म से अगर कोई ब्राह्मण हो, लेकिन अगर उनके कर्म ब्राह्मण की तरह नहीं हो, तो हमको तो यही पता नहीं है कि ब्राह्मण के गुण कौन से हैं। तो हम सबको जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ना? कि भाई ये, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब ब्राह्मण कुल में जन्मने वाले भी ब्रह्मज्ञानी थे। ब्राह्मण का मतलब है जो तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान दे, भगवान की ओर ले जाए, ब्राह्मण की ओर ले जाए। तो स्वभाव जो हमारा बनता है वो हमारे कर्म के अनुसार संस्कार होते हैं, और संस्कार के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, और फिर हमको उस योनि में जन्म मिलता है। तो भगवान ने कहा है कि भाई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन तुम्हारा नेचर ब्राह्मण के अनुसार नहीं हो, तो तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो गुण है, अभी देखो द्रोणाचार्य जी ने का जन्म तो था, ज्ञानी भी था, अध्यात्म ज्ञान तो उनको भी था, ऐसी बात नहीं थी कि उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था, लेकिन क्यों गिर गए अपने पद पर से? जब मनुष्य गिर जाता है तो क्या होता है? वो भी अध्यात्म ज्ञान भी था, ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ था, लेकिन अपने पद से गिर गए। क्यों? वो तो राजनीति में नहीं, वो तो राजनीति में इन्वॉल्व थे ही नहीं, वो तो ब्राह्मण थे पहले, कुलगुरु तो बाद में बनाए गए, कुलगुरु तो बाद में हुए हैं, पहले तो ब्राह्मण थे, घर में भिक्षा मांग के ही अपना गुजारा करते थे। असत्य का साथ तो बाद में दिया, जब आदमी अपने जो धर्म होता है, जैसे स्त्री का धर्म होता है, बच्चों का धर्म होता है, गृहस्थी का धर्म होता है, वैसे वर्ण का भी धर्म होता है। ये स्टोरी भी जानना बहुत जरूरी है। याद है तुमको सीमा? मैंने बहुत कई क्लास में ये स्टोरी बताई हुई है। अब देखते हैं सीमा को कितना याद है, हेल्प करेंगे उसके बेबी अगर भूल गए तो। हिंदी में या इंग्लिश में?
ओके, ही वाज ब्राह्मण बट ही डिडंट हैव इनफ मनी, सो व्हेन ही इन हिज चाइल्डहुड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ रूपर्ट एंड दे हैड मेड अ प्रॉमिस टू ईच अदर दैट they will help each other when they grow up if anyone is in need of trouble. So when Drupad became a king, and because Dronacharya didn't have any money, he felt that he's my friend, and because of the promise, you know, he should help now. So he went to ask for help, but Drupad, he, I guess out of pride or out of the feeling of power, and he didn't pay any regard to him. He forgot his promise and he insulted Dronacharya. So then Dronacharya, there is a feeling of animosity. I forget what happened after.
He went to just ask for one cow,
yeah,
because his son did not get milk, so he went to ask for one cow. And then he Drupad insulted him that he cannot give any cow.
अपमान किया था जब उसके राजमहल में गए तो उन्होंने अपमान किया, तो सबके सामने जब अपमान होता है तो नेचुरली अगर अध्यात्म ज्ञान नहीं है तो बहुत बुरा लगता है, अगर अध्यात्म ज्ञान हो लेकिन अध्यात्म ज्ञान पचाया नहीं है तो भी बुरा लगता है, संत को भी बुरा लगता है, लेकिन एक ही सेकंड के लिए उनको भगवान के दर्शन हुए तो माया में शरीर है ना, तो बहुत ही कम आता है चले जाता है हवा के झोंके की तरह। एनीवे, जब मनुष्य किसी भी बात से गिर जाता है, अपने धर्म से जब गिर जाता है, तो उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि मोह, और मोह क्यों होता है, अज्ञानता की वजह से मोह होता है। अपने को शरीर मान लिया, अपने को लिमिटेड मान लिया, तो पहले तो मोह होता है, और मोह होता ही किस लिए है, अगर हमें पता हो कि हम तो इतने बड़े भगवान के अंश है, हाँ, ये तो सब प्रकृति का नेचर है, आने वाला है जाने वाला है, तो हम उसके लिए क्यों रोए, जो हो रहा है हम स्वीकार कर ले। तो सब ये दुर्योधन, ये द्रोणाचार्य जी के पीछे भी एक मोह था, कौन सा मोह था, बच्चों का, पुत्र का। जब याद रखना, कहीं भी नाम कीर्ति में से आदमी गिर जाता है, कहीं से भी स्त्री भी अगर गिर जाती है अपने धर्म में से, कहीं भी अगर गिरने की बात है तो उसका कारण है मोह। जब आप अपना कर्तव्य भी नहीं करते हो ठीक तरह से, उसके पीछे भी मोह है, तो जीने का मोह है, शरीर का मोह है, नेम एंड फेम का भी मोह है, हा? तो आदमी स्वजनों का मोह है, फैमिली का, कुल का भी मोह है। मैं इतने बड़े कुल की हूँ, ब्राह्मण कुटुंब में हूँ, हमारा राजघराना तो लोग तो बातें करते हैं, मैं तो बातों के ऊपर से पता लगता है, भाई लोग भी बातें करते हैं, स्त्रियां भी बातें करते हैं, तो उसको कितना मोह है, ये शब्दों पर से आत्मज्ञानी जान सकता है। संसार में जो होते हैं ना वो नहीं जान सकेंगे, क्यों, क्योंकि संसारी खुद में मोह है तो दूसरों का मोह कैसे देख सकते हैं। तो जो माया में से निकल गए हैं ना, वही देख सकते हैं कि ये व्यक्ति में कितना मोह है। जब तक हम माया में है तब तक मोह का पता नहीं लगेगा, जब तक गंदगी में है हम गंदे पता नहीं लगेगा, जब सच्चे होते हैं तब पता लगता है कि गंदगी क्या चीज है। सो द्रोणाचार्य जी को देखो मोह था, उनके गिरने का, उनके पतन का ज्ञान था, उनको अध्यात्म ज्ञान था, लेकिन ज्ञान उन्होंने जीवन में जब समय आया तो ज्ञान उतारा नहीं। अगर उनका अपमान भी किया था तो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ना था, और उनका धर्म क्या था कि वो पहले अध्यात्म ज्ञान सिखाते थे लोगों को, भगवान की ओर ले जाने का ज्ञान सिखाते थे। बाद में उन्होंने जब मोह की वजह से अपने बच्चे के मोह, कितने लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो मेहनत करना था, मेहनत करके बच्चों को दूध ले आना था, अपना धंधा छोड़ने की क्या जरूरत थी, स्वभाव छोड़ने की क्या जरूरत थी। तो उनका स्वभाव क्षत्रिय नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं राजघराने में जाकर मेरा धंधा ही बदल दूंगा, जैसे पटेल लोग ने खेती छोड़कर डॉक्टर बन गए, ये सब हो गया ना, होता ही ये सब, अब देखो मिश्रण हो गया। लेकिन भगवान ने कहा अगर तुमको रियली डॉक्टर का नेचर है तो बनो, और रियली तुम खेती का पटेल के वहां जन्म है लेकिन तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो तुम ब्रह्मज्ञान दो, कुछ गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, बाय नेचर सहज स्वाभाविक, कि तुमको बोझा नहीं लगे। तब तुम्हारे लिए वो नेचुरल है। लेकिन अगर पैसे की वजह से हम डॉक्टर होते हैं या नाम नेम एंड फेम की वजह से हम डॉक्टर होते हैं तो वो बात गलत है। तो ये सिद्धांत है, ये हमको अच्छे लगे या नहीं लगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं होता है तो सब हम उल्टी बातें करते हमने की है आज तक, यू नो। तो ये हमारे को पसंद है या नहीं पसंद है, हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, ये भी बहाना नहीं निकाल सकेंगे कि भाई अमेरिका में है या यू नो ये टेक्सास में है, कुछ भी बहाना नहीं चलता है। क्योंकि ये बहाने जब निकालते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमको दुखी होना है, और भगवान कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि बनाकर ये कुछ नियम बनाए हुए हैं, अगर सुखी होना हो तो उस नियम के अनुसार तुम चलो, तुम सुखी हो जाओगे। तो भगवान तो हमको सरल रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए अगर टीचिंग सरल है तो तुम वो करो, तुम्हारे लिए अगर खेती सरल है तो तुम ये करो। ये नहीं कि भी मुझे पैसे, क्योंकि पैसे जब ज्ञान होता है ना तो उसको पता होता है कि पैसे से शांति नहीं मिलने वाली है। ज्ञान होता है तो मुख्य पता होता है कि ये हम पैसा वैभव, पैसे की अगर मैंने पहले भी कहा है कि पैसे और धन वैभव से अगर मनुष्य को शांति मिली होती तो राजा भर्तृहरि ने, बुद्ध ने, महावीर ने और रेणु मीरा ने, ये किसी ने भी धन वैभव का त्याग नहीं किया होता। तुच्छ लगता है, क्योंकि जब मन में शांति ही नहीं है तो राजमहल में रहो तो क्या फर्क, लेकिन झुपड़ी में रहो लेकिन शांति है तो मनुष्य शांति और प्रेम को ढूंढता है। और वो पाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार जब कर्म करोगे तो तुमको आनंद मिलेगा। तो देखो, मोह की वजह से द्रोणाचार्य जी का पतन हुआ, उन्होंने अपना धंधा अपना स्वभाव जो था उसको छोड़ दिया और बच्चों का पालन करने के लिए राजघराने में उन्होंने
इतने वो ज्ञानी थे फिर भी वो सोच नहीं पाए कि
सोच नहीं पाए तो माया का पावर क्यों, वही कि मोह था, क्यों सोच नहीं पाए कि मोह बहुत था। तो मोह निकालना कोई सरल बात नहीं है। देखो अर्जुन इतना बड़ा था तो अर्जुन को भी मोह हुआ ना, लेकिन देखो मोह तो सबको होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है सृष्टि में, क्योंकि भगवान का ये वैभव ही इतना पावरफुल है ना। माया है नहीं, भगवान की नेक शक्ति है, बिल्कुल नजदीक की शक्ति है। तो वो भगवान की जब शक्ति होती है तो ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी। तो मोह तो सरल है, लेकिन मोह होने के बाद भी अगर हमको कोई सच्ची व्यक्ति मिल गई, जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान मिल गए, और देखो दुर्योधन को भी मोह था, धृतराष्ट्र को भी मोह था, अर्जुन को भी मोह था, लेकिन अर्जुन को मोह होते हुए भी बच कैसे गया, क्योंकि भगवान के शरण में गए। तो मोह तो सबको होता है, और जिनको मोह नहीं होता है उनके पास जब हम जाते हैं तब वो हमें मोह से मुक्त करते हैं। हमको देखो डॉक्टर उसी के पास जाना चाहिए जो एक्सपर्ट हो उसमें। तुमको खाना बनाने को कौन सिखा पाएगा, जो सीखता है वो थोड़ी सिखाएगा, हाँ जो एक्सपर्ट है वो सिखाएगा। हर कला में यही है, डांस ले लो, म्यूजिक ले लो, कुछ भी छोटी से छोटी कला ले लो, अगर आप एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वो कला आपको सीखने में मिलेगी। और ये जो भगवान की कला है आनंद करना, ये जो है उस मोह में से जो मुक्त होगा वही ये तुमको ट्रांसफर कर सकेंगे। इसीलिए गुरु के लक्षण होने से पहले के जमाने में, अब गुरु क्या है वो भी पता नहीं है, शिष्य क्या है वो भी हमको आजकल के जमाने में पता नहीं है, भेद ही तो पता नहीं है कि पंडित कौन है, धर्म गुरु कौन है, सच्चे तत्व ज्ञानी कौन है। तो पहले के जमाने में तो जब गुरु के पास जाते थे तो शिष्य को इतना ज्ञान था कि मुझे किस प्रकार के गुरु चाहिए, जिनको सिद्धि हो इन सिद्धि के पीछे थे जो शिष्य, वो ऐसे गुरु को ढूंढते थे जो सिद्धि उनको देंगे। जिनको भगवान के दर्शन और शांति चाहिए थी वो ऐसे गुरु को ढूंढते थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हो, जो नाम और कीर्ति के पीछे नहीं हो, हाँ जो शिष्य के गुलाम नहीं हो। आजकल तो गुरु ही शिष्य के गुलाम होते, तो सोचते नहीं है ये लोग कि भाई जो हमारे गुलाम होंगे वो गुरु हमको क्या देने वाले, तुम्हारे ऊपर जो निर्भर है वो तुमको कुछ दे पाएंगे। तो ये तीन बातें विवेक चूड़ामणि का एक बहुत अच्छा श्लोक है, कभी हम करेंगे, उसमें कहा है कि गुरु के तीन लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए होना चाहिए, हा? तो भगवान के दर्शन जिन्होंने किए है वही तो आपको भगवान के दर्शन कर पाएगा ना, हाँ जिसने जो चीज देखी है वही उसकी पहचान करा सकता है। दूसरा उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है वो शास्त्रों से मिल सच्चे शास्त्रों से मिलता होना चाहिए। सच्चा शास्त्र मतलब भगवद गीता, विवेक चूड़ामणि, उपनिषद, रामायण पारायण की बात नहीं है, क्योंकि रामायण पारायण तो कहानी के रूप में तत्व दिया गया है। तो उनका जो ज्ञान है बिल्कुल शास्त्र के विरोध नहीं होना चाहिए, शास्त्र से मिलता होना चाहिए। और तीसरा है कि वो किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। उसको कोई ये नहीं है इच्छा होना चाहिए कि मुझे इतने मंदिर बांधना है या आश्रम बनाना है या इतने शिष्य बनाना है। क्योंकि जब कुछ बनाना है, जब कुछ करना है तो क्या हो जाता है, तुम सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते हो किसी को। जब पैसे चाहिए तो तुम ऐसा ही ज्ञान दोगे जिससे लोग खुश हो जाएंगे, और खुश होगे तो पैसे देंगे। खुद लोग खुश नहीं होंगे तो पैसे कैसे देने वाले हैं बताओ, एक पैसा भी नहीं देंगे, मुफ्त में ज्ञान ले लेंगे। तो ये देखा जाता था। और शिष्य की भी काफी साथ लाइक आती है, वो फिर बाद में कभी जब ये श्लोक आएगा ना शिष्य का तब। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप कभी भी सच्चे शिष्य नहीं बन सकोगे। सबको गुरु होना है, गुरु सबको होना है। एक शिष्य थे तो उन्होंने सुना है कि भाई अगर गुरु के पास जाओ तो ज्ञान तुमको मिलेगा। तो उनको लगा चलो हम भी कोई गुरु ढूंढ देते हैं, तो उनके पास जाकर हम ज्ञान ले लेंगे। गुरु के पास गए और गुरु को कहने लगे कि भाई मुझे क्या करना है, हाँ मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है ज्ञान लेने के लिए। तो गुरु ने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो गुरु को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो बोले मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बस बैठे रहता हूँ। तो बोले मुझे भी बस आपकी तरह बैठे रहना, मुझे भी कुछ नहीं करना है। तो गुरु असल में बैठे थोड़ी रहते हैं, लेकिन परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं बैठे रहता हूँ। तो बोले मुझे भी गुरु ही बनना है, मुझे शिष्य नहीं बनना है। तो कभी भी शिष्य बने बिना गुरु नहीं बन सकते। गुरु भी बनना है तो भी शिष्य बन जाओ पहले, भगवान बनाएगा। लेकिन आजकल के जो लोग होते हैं ना, उनको पहले गुरु बनना है बाद में शिष्य बनना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या कभी? जो बात पॉसिबल नहीं है वो बात हम करना चाहते हैं, देखना। आजकल थोड़ा सा हो गया तो बोलते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा हमने सुन लिया, थोड़े से श्लोक बोलते आ गए, थोड़ी से श्रुति आ गई, थोड़ा सा मास्टरी आ गई, तो हमको लगता है कि चलो हम अब टीचिंग के लायक हो गए, अब हम गुरु बनने के लायक है। रामकृष्ण तो कहते थे जब तक भगवान का बिल्ला आपको नहीं मिले ना, तब तक शास्त्र ज्ञान, मतलब भगवान का ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। और भगवान का बिल्ला क्या है, जैसे पुलिस का बिल्ला होता है ना, तो ड्रेस देखते ही डर लगता है अपने को। हाँ स्पीड कार मैं देखती हूँ कि हम लोग जाते हैं तो बिल्कुल धीमी धीमी कार हो जाती है, जब पुलिस की कार देखते हैं तो ड्रेस देखकर ही आधा ढीले हो जाते हैं। वैसे संतों के पास बिल्ला ये क्या है, क्या बिल्ला हो सकता है कि उन्होंने दर्शन किए हैं तभी तो आपको वो दर्शन करा सकेंगे। तो बिना कुछ किए कुछ मिलने वाला नहीं है। सो यहाँ पर देखो द्विजोत्तम कितना दुर्योधन सामान्य गुरु है, टीचर है, उनको भी मान दे रहे हैं कि आप तो द्विजोत्तम है। ऐसे नहीं कि आप आपका दूसरा जन्म हुआ है, मतलब आपको शास्त्र ज्ञान भी है, अध्यात्म ज्ञान भी है। और कोई भी गुरु हो, शास्त्र विद्या की गुरु हो चाहे अध्यात्म की गुरु हो, संसार में भी कोई विद्या लेना है, तो जब तक आप गुरु के पास नम्र नहीं होंगे आपको वो विद्या पचने वाली नहीं है। मुझे पता नहीं है कि ये सीमा योगासन सिखाती है तो आप उसके पास नम्र हो कि दादागिरी से रहते हो। उसकी उम्र मत देखो, उसकी एबिलिटी देखो। शंकराचार्य जी भी छोटे थे, हाँ 16 साल के थे तो ब्रह्म ज्ञान देते थे। तो ज्ञान में कभी कोई उम्र देखी नहीं जाती है, उनका ज्ञान देखा जाता है। अगर तुम फ्रेंड भी हो तो भी फ्रेंडशिप बीच में लाओगे तो कभी आपको ज्ञान पचने वाला नहीं है। तो उसके छोटे उसका उम्र नहीं देखना है, वो देखना है कि अभी हमारी ये टीचर है, गुरु है, हम लेने आए हैं। उसको प्रेम हो, उसको अंदर से अगर चीट तुम्हारे लिए हो कि भाई ये तो दादागिरी करती है, अहंकार से सीखना चाहती है, तो हो सकता है उसको तो भगवान का रास्ता लेना है, सेवा की दृष्टि से कर रही है तो वो तो सिखा देगी। लेकिन नुकसान किसको होगा? आपको नुकसान होने वाला है। पैसे देने से खाली सीखते नहीं है, पैसे देने से कुछ थोड़ा ले सकते हो तुम, कोई विद्या थोड़ी प्राप्त कर सकते हो। वो तो थोड़ा सा टोकन की दृष्टि से पैसे देते हो, कभी कोई विद्या का वैल्यू आप चुका ही नहीं सकते हो, चाहे संसारी हो चाहे अध्यात्मिक हो। इसके पीछे कितने लोगों ने का अनुभव होगा। तो गुरु के प्रति मान होना चाहिए, उनको आप कहना है, तुम तो कभी आना ही चाहिए। मैं आजकल सुनती हूँ गुरु को भी तुम कहते हो। अगर गुरु थोड़े से फ्रेंड की तरह बिहेव करने लगे तो तुम भूल जाते हो कि ये गुरु है, तुम आ जाता है। तुम आया मतलब तुम अपने आप को उनके लेवल का समझने लगे हो। कभी तुम नहीं आना चाहिए. यस नहीं, हिंदी लोगों की बात कर रही हूँ. हिंदी स्पीकिंग लोग तुम कहते हो, और हिंदी लोगों को उतना तो पता होने, गुजराती में भेज नहीं है ना ज्यादा.
एक्चुअली जो लोग हिंदी बोलते हैं वो लोग इतना तुम नहीं बोलते, जो पंजाबी है ना
हाँ?
उन लोगों में ज्यादा तुम बोलते हैं. हम लोग हैं हम लोगों में बड़ों को आप ही बोलते
हैं, आप ही बोलना चाहिए.
जैसे किसी भी बड़े से एड्रेस करते हैं तुम कभी, से एक साल दो साल बड़ी बहन की
राइट आप ही. और यहाँ तो मैं चलो संसार में भी हमको तो वो करना है, हमारे से जो बड़े हैं उनको कहना है, लेकिन यहाँ तो विद्या लेने की बात हो रही है. कुछ भी लेना हो तो आप शब्द होना चाहिए, कभी आपसे नीचे नहीं उतरना है. चाहे वो भले उतरे, चाहे सीमा भले श्रेया को अपनी सहेली माने, श्रेया ने अपनी सहेली उस वक्त नहीं मानना है जब सीख रही है. बाकी के समय में तुम ठीक है, बाकी के समय में तो तुम फ्रेंड हो ही. हो सकता है कल अगर श्रेया कुछ सिखाए तो सीमा को भी उसी तरह बिहेव करना है, क्योंकि कुछ लेना है. जब लेना होता है अपने को तब नम्र होता है, नम्र होना चाहिए. नम्र नहीं होंगे तो हम कोई भी ज्ञान नहीं ले सकेंगे. और जब फ्रेंडशिप आती है ना तो बहुत बहुत पॉसिबल है कि तुमको नुकसान होने वाला है, क्योंकि फ्रेंडशिप का अभ्यास ज्यादा है. तो तुम कभी कभी अगर तुमको गलती अगर कुछ कहे ना कि भाई ये गलती कर रहे हो तो तुम हंसी में उड़ा डालते हो. जब भी कोई गलती कहे बिल्कुल सीरियस हो जाना है, हंसी में नहीं करना है, हंसी में टाल नहीं देना है. वो संसारी की रीत है, हंसी में टाल देना संसारी की रीत है कि हंस देते हो, बिल्कुल हंसना नहीं है. जब कोई भी गलती तुम्हें बताते हैं तो नम्रता से सुनो, पूरा अटेंशन दो. मेक श्योर कि तुम गुरु को बताओ कि मैंने सुना है ठीक तरह से. लोग सुनते भी है तो ध्यान नहीं देते. क्यों? अहंकार बीच में आता है, ईगो. ईगो भी तो हमारी झटकी मूड है. अरे जो तुमको दुख देता है उसको क्यों पास में लेके बैठे हो, छोड़ दो उसको. तो ये ध्यान रखना कि अभी कौरव सेना का जो वर्णन हो रहा है तो ये कौरव किसको कहते हैं, ये दुर्योधन में ये सारी क्वालिटी थी. गुरु के साथ भी कहा तो आप करे, आप स्वयं है हो मेरे में तो आप कुछ छोटे थोड़ी हो. अभी थोड़ा गुरु की स्तुति जरूर करना चाहिए. अभी देखना 11 चैप्टर में भगवान की स्तुति अर्जुन कितने करते हैं. भगवान की स्तुति यानी झूठी झूठी स्तुति नहीं है, वो सच्ची स्तुति करना, नहीं तो आप भी स्तुति करने लगोगे. आपकी चप्पल बहुत अच्छी है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, जो रियल है और अंदर से आनी चाहिए. अंदर से जब तक स्तुति नहीं आए बोलने की जरूरत नहीं. स्तुति हम गुरु की नहीं करते हैं, किसकी करते हैं? उनमें जो सत है, उनमें जो भगवान है, उनमें जो एक शक्ति है, उनमें जो प्रेम है, उनकी तारीफ करते हैं. और जो हकीकत है तो संसार में भी झूठी झूठी तारीफ नहीं करना. वो एक हमको यहाँ पर गीता सिखाती है, तारीफ करना हो अपलिफ्ट करने के लिए जरूर कहो कि भाई आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है. लेकिन नमक ही भूल गए हो और फिर आप कहो कि बहुत अच्छा खाना बनाया है तो वो गलत बात आएगी. अगर आप अच्छे फ्रेंड हो तो कहो कि भाई चीज तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें नमक नहीं है, ठीक है ना. सो यहाँ पर देखो
बाद में क्या हुआ कि उस द्रोणाचार्य के मन में रिवेंज की भावना होगी तो जब गुरु दक्षिणा कौरव पांडव को शिक्षा दी तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में ऐसा मांगा कि जनक और द्रुपद राजा को बांध के मेरे पास ले आ. तो पहले दुर्योधन वगैरह थे वो नहीं ला पाए, बाद में अर्जुन वगैरह थे तो वो उसको बांध के लाए. बाद में लेकिन मेरे को राज नहीं चाहिए, मेरे को तो जो एक गाय चाहिए वही गाय मैं ले लेता हूँ. बाद में क्या हुआ कि जो उसको तो गाय मिल गई और बाद में द्रुपद राजा के मन में भी इतना ही रिवेंज हो गया कि मेरा इतना इंसल्ट किया तो उसने कुछ हवन वगैरह किया, उसमें से दुष्ट धुन पैदा किया कि जो द्रोणाचार्य को मार सके.
तो हमको ये सीखना है कि भाई देखो ये छोटा सा अपमान आदमी को कितना बड़ा नुकसान कर देता है. और हमें ये सोचना है कि हम तो ये नहीं कर रहे हैं, जब भी हम ये ज्ञान लेते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि द्रोणाचार्य जी ने करा, हमको तो यही सोचना है कि ये ना हो कि आज, क्योंकि ये मैसेज तो कैसा है, सनातन है, हमेशा हर स्थिति में हर व्यक्ति को हर देश के लोगों को लागू होने वाला है ऐसा, इस तरह से ये मैसेज है। तो हमारे अंदर भी कौरव भी वृत्ति है, पांडव भी वृत्ति है, तो कौरव वृत्ति को जीतने के लिए पांडव वृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब दैवी वृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा आसुरी वृत्ति को का नाश करने के लिए। तो हमारे में भी देखो वृत्ति आ जाती है, कब, जब कोई अपमान करता है। तो हमने ये उदाहरण पर से देखना है कि देखो ये महाभारत की लड़ाई भी द्रौपदी ने अपमान किया था ना? दुर्योधन का अपमान किया था ना, कि अंधे के लड़के अंधे होते, तो ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था, वो तो उनके कौन थे, देवर थे ना, ना? तो देखो उनके भी, वो भी कम नहीं थे, लेकिन वो बच इसलिए गई कि भगवान पर उसको अकल आई कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ। भले ही हम गलतियां करें, लेकिन अगर इतना विवेक हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं और कोई हमको मार्गदर्शन सच्चा दिखाने वाला है, उनके शरण ले ले, तो काम बन जाए। तो द्रौपदी भी बच गई, ये भीम भी कम था, उसमें भी लगता था कि मैं कम हूँ, अगर मुझे आज्ञा दे दे तो अभी सबको ठिकाने लगा दूँ, उसको अपनी शक्ति पर यू नो जो गर्व था, तो ये कम नहीं थे कुछ। पांडव वृत्ति में भी कोई कम वैर भाव नहीं था, कम अहंकार नहीं था, लेकिन बस गए कि भगवान का शरण ले लिया। वैसे हमारे में भी कम अभिमान नहीं है, लेकिन हम इतने थोड़े तो है कि चलो भगवान के शब्द सुनते हैं, तो हमको भी बहुत पॉसिबिलिटी कि हम भी बच जाएंगे। ये अहंकार के राक्षस, अहंकार एक राक्षस है, तो उसमें से हमको, क्योंकि अहंकार ही होता है ना जिसकी वजह से हम घर में ना शांति ले सकते हैं, ना फ्रेंड सर्कल में भी हमको शांति नहीं मिलती। इंडिया में भी जाओ तो कुछ किसी ने ताना मार दिया कि अरे अभी अमेरिका से आए और इतने कंजूस हो, तो चलो वो हमारा दिमाग चले जाता है। तो ये सब तो बातें हमको दुखी दुखी कर देती है, तो बोलने दो। लोग बोलते हैं बेचारे भी, क्योंकि अज्ञानी है, अज्ञानी लोगों को विवेक नहीं होता है, लेकिन भगवान ने मुझे तो थोड़ी गीता सिखाई है और कहा है कि अहंकार से मैं दुखी होने वाली हूँ, तो मुझे तो ये नहीं करना है। सो यहाँ पर देखो कि ये सब रिपीट ही हो रहा है हमारे अंदर भी। आज अगर किसी ने 10 साल पहले किसी ने अपमान किया होता है, तो हमको भी लगता है कि अरे उस दिन तो हमारे पास कुछ स्थिति ऐसी थी कि हमने सहन कर लिया, लेकिन आज हम सहन करें तो हम उसको ब्याज के सहित लौटाते हैं, तो वो तो फिर चक्कर चालू ही रहता है ना। वही तो कारण है कि हम जन्म मरण के दुख में से मुक्त नहीं हो सकते हैं। फिर वो लेता है बदला, फिर हम बदला लेता है, फिर वो बदले लेते, चलती है गाड़ी। तो जब तक मोक्ष क्या है, जब तक हमारे में से राग और द्वेष वैरभाव की वृत्ति संपूर्ण तरह से नाश नहीं होती है, तब तक हमको शांति नहीं मिलती है, और वो शरीर होते हुए ही प्राप्त करना है, उसको ही दर्शन कहते हैं। तो धीरे धीरे तुम देखो कि तुम्हारा हृदय सच्चे ज्ञान से विशाल होता है या नहीं। पहले तो बहुत संकुचित होते थे कि 4 ही आदमी को अपना मानते थे, अब 8 आदमी। तुम्हारा फैमिली दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, सच्चे ज्ञान है, सच्ची भक्ति है, सच्चा कर्म है, सच्चा जीवन है, तो हमारी ये क्वालिटी पांडवों की जो है अच्छी, वो बढ़नी चाहिए, स्वभाव बढ़ना चाहिए। उससे बढ़ने से क्या बढ़ेगा, ये सब दैवी वृत्ति बढ़ने से क्या बढ़ेगा, हाँ, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान की ये निशानी है कि ज्ञान सच्ची होगा। अच्छा, ज्ञान और भक्ति में दोनों में सुपीरियर कौन है, तो फिर ज्ञान क्यों ले रहे हो अभी? बिल्कुल, भक्ति सुपीरियर है। ज्ञान का परिणाम एक लेवल ऐसा भी है कि भक्ति को ही ज्ञान कह दिया है, नाम ही अलग है, लेकिन दोनों समान है एक दृष्टि से। एक दृष्टि से ज्ञान का परिणाम प्रेम या भक्ति होना चाहिए, लेकिन भक्ति अगर ज्ञान के फाउंडेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, पाया, नींव के ऊपर नहीं हो, तो फिर वो हम देखते हैं कि फिर भक्ति लोग किसको कहते हैं। गीता में भक्ति उसको कहते हैं कि अदृष्ट, वो जो भक्ति के लक्षण है ना, अदृष्ट भूतानाम सर्वभूतानाम, हाँ, मित्र और सब, उसके सारे लक्षण बताए गए, तो वो भक्ति के लक्षण है। तिलक या साड़ी या कपड़े का कलर या लकड़ी या खाना या एकादशी करना, अभी तो मैंने देखा अभी एकादशी बहुत गई, आप लोगों ने भी शायद की, फराड़ खूब किया, हाँ, भजिए बनाए, वो उसके भूल जाती हूँ, हाँ हाँ, राजगृह का सीरा बनाया, ये नहीं कहते कि थोड़ा चेंज चाहिए, पहले के जमाने में पिज्जा नहीं मिलता था ना तो चेंज नहीं था, तो चलो कुछ चेंज करो तो उसके लिए ये कुछ यू नो हम फराड़ बनाते, सूखी भाजी करते हैं, और फिर क्या होता है मानो अच्छा। अरे फिर बड़ा अच्छा दिन है आज तो, होली खेलना चाहिए, बेकार में बैठे हैं। हाँ वो सच्ची, ये रंग तो ऐसा रंगना चाहिए जो कभी निकले ही नहीं। तो अभी मैं देख के आ रही हूँ ना, वो बात कर रही हूँ कि भाई वो एकादशी करो, इतना आगे इतना आगे, इसके बेचारे उनको देखकर मुझे दुख होने लगा कि ये एकादशी करते क्यों, भगवान ने हैरान होने के लिए एकादशी करने का कहा है। अरे तुम आनंद करो, खेलो, मजा करो, बात करो, फिर गैस होता है तो झगड़ा करते हैं, बहू के ऊपर चिढ़ जाते हैं, तुमने ये नहीं किया। फिर क्योंकि आदमी जब बीमार होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा, अपने ऊपर थोड़ी गुस्सा निकालेगा, हे शरीर तुमने गलती की है। किसके ऊपर गुस्सा निकालेगा, सीमा आएगी तो सीमा के ऊपर, जो आएगा उसके ऊपर गुस्सा निकलेगा, जिसका बच्चे किसी के भी ऊपर। जब गुस्सा आता है तो आदमी तो अपना होश खो देता है, उसको पता नहीं है कि ये मेरे ही स्वजन है, जो हो गए उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, और ये नेचुरल है, होने देना है। भूख से गुस्सा आता है, भूख से, और ये गैस होती है ना तब भी बहुत गुस्सा, क्योंकि गैस का पीड़ा बहुत होती है, सहन नहीं होता है। एक तो इतनी पीड़ा होती है कि तुम गुस्सा हो ही नहीं सकते हो, ढीला कर देता है भगवान, लेकिन जरा थोड़ी सी शक्ति रही तो फिर वो दूसरे के ऊपर गुस्सा होता है। तो भगवान ने ये जो नियम बनाया है इतने बढ़िया बनाया है कि तुम चलो ना, उसका मतलब ये नहीं कि तुम भाई एकादशी नहीं करो, लेकिन तुम्हारा डाइट को ठीक तरह से देखो, हैरान नहीं हो, आनंद करने का दिन है तो हम यू नो ये करते हैं। तो चेंज अगर फूड में चाहिए तो फिर ये चालू दिन भी सब्जी रोटी भी खाओ और फराड़ भी खाओ, क्यों अपने आप को धोखा देते हो। कई लोग बोलते हैं कि हम तो ये थोड़ा चेंज मिलता है तो एकादशी भी कर लेते हैं, जन्माष्टमी भी करते हैं, चेंज का बहाना भी हो जाता है, भगवान की अपवास भी हो जाता है, दो दाना देखो उनकी दानत देखो। ये तो ऐसा है कि संत को मिलने के लिए जाना नहीं, लेकिन घर का घर बीच में ही रहे उनका रास्ता, तो चलो थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे, हेलो भी कह देंगे, तो ऐसे थोड़ा संत खुश होने वाला है। वो धर्म गुरु होगा तो खुश होगा, लेकिन ये संत थोड़ा खुश होने वाला है, चाहे तुम उनको कितना भी डोनेशन दो, सेवा करो, वो तो पता है कि भगवान देखने वाला है। रियली मंदिर में जाना है तो ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल मंदिर के लिए ही तैयार हो, उनके लिए ही समय निकालो, फिर कहीं मंदिर में, ये नहीं कि चलो अभी उधर जा ही रहे हैं तो कर ले, वो भी संसार में करो, समय बचाओ, लेकिन धर्म के मार्ग में उसकी तुमको क्रेडिट नहीं मिलने वाली है, तो अपने आप को नहीं धोखा देना। यस मुझे तो बिल्कुल भूखे रहो, थोड़ा फराल करो, थोड़ा सा जो नेचुरल हो बनाना खाओ, जिससे गैस नहीं हो, अच्छी तबीयत हो, तला नहीं खाना है बिल्कुल, क्योंकि एक ये है कि बॉडी को जो सूट हो और तुम अपना आनंद नहीं गुमा वो तुम खाओ चलो, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ मेन्यू कि भाई तुम यही खाओ, तुम अपने प्रकृति का स्वभाव का अभ्यास करो और ढूंढ निकालो कि तुमको क्या सूट होती है। तुमको पता होती है कि तुवर की दाल खाते हो तब गैस होती है, चना खाता हो, और एकादशी की क्या बात है, रोजाना की बात है, अगर तुवर की दाल गैस करती है तो वो बंद करनी चाहिए, चने की दाल अगर तुमको पीड़ा कर रही है, अब नहीं पच रही है तो उसको छोड़ दो, या इस तरह से खाओ कि तुमको पचे, ज्यादा लिक्विडी करो या उसके बाद चलो, या कुछ करो, ढूंढो रास्ता, और रास्ता है, भगवान ने बनाए हैं। तो एकादशी करो, लेकिन तुमको चिढ़ना नहीं है, अगर उस दिन चिढ़े ना एकादशी की वजह से तो तुम्हारा अपवास गया काम से, अपवास नहीं, तुमको लगता है तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैंने उपवास किया, भगवान की दृष्टि में तो तुमने उपवास की वजह से तुमने गुस्सा किया तो वो तुमको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी फिर।
हाँ
राइट। एक बहुत माता जी थे तो वो कहते हैं कि उपवास का अर्थ उन्होंने ये निकल रहा था कि ऊपर वाले का वास करना है, वो भी अच्छा है, बेचारे जो नहीं पढ़े लिखे होते तो वो ऊपर वाला कौन है हमारे, यानी ऊपर वाले हमेशा भगवान, तो उनका वास करना मतलब उनका संग करना है, उपवास के दिन ज्यादा भक्ति करना है, ज्यादा निस्वार्थ सेवा करना है, ज्यादा भजन कर लेना है, क्योंकि खाना नहीं बनाना है तो टाइम मिलना चाहिए, तो एक फायदा तो वो होगा कि भक्ति ज्यादा करो, मन भक्ति करोगे तो चीयरफुल रहोगे, और थोड़ा जो सब्जियां का कितना खर्चा होता है तो वो थोड़ा $2 बचाओ और उसका दान करो, और हमारा शरीर ऐसा है, रोज है ना खाते में मशीन चालू रहता है ना, तो उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो हेल्थ अच्छी रहे। तो ऐसे कई कारण हैं, उसकी वजह से हमने उपवास की पद्धति डाली कि पैसा समय बचाओ और ये थोड़ा सा तुम एक टाइम नहीं खाओगे तो ये पेट को आराम मिलेगा, आराम मिलेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। श्रेया कुछ प्रश्न था? यस, उपवास स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करते। मैंने बहुत उपवास किए थे, बहुत, लेकिन उतनी एक्सट्रीम तक नहीं करना है कि तुम शरीर को बिगाड़ दो। बुद्ध भगवान ने 5 साल तक उपवास किया, उन्होंने अपनी बॉडी बिगाड़ दी थी, कोई उनको गाइड करने वाला अच्छा मिला नहीं। तो देखो उन्होंने फिर अपने शिष्य को और सबको इसी तरह गाइड किया, क्या समत्व भाव में खाओ। गीता में भी समत्व भाव में कहा है कि तुम रोज का उपवास करो, रोज ओवर ईट मत करो, टाइम से खाओ, थोड़ा खाओ, सात्विक खाओ, वो सच्चा उपवास है। एक दिन उपवास करना सरल है, लेकिन रोज उपवास करना बड़ा बड़ा कठिन है। तो गीता में और संतों ने ये, और संतों ने अपने अनुभव पर से ये सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में दूसरी बात हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता है भाई, हाँ शुरू में ठीक है, कंट्रोल नहीं रहता है तो अपने को भक्ति करना है। तो भक्ति करने के लिए जब रात को लेट खाते हैं ना तो सुबह उठा नहीं जाता है। तो उपवास इस दृष्टि से मतलब करो कि मुझे भक्ति करना है ज्यादा, तो फिर वो उपवास स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा। सुबह उठने के लिए उपवास फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम अपने रात को लेट मत खाओ, वो भी उपवास है। एक्चुअली अचीव क्या करना है उपवास से? अचीव कुछ तो तुम्हारी इच्छा होगी ना, भगवान को प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है। यस, लोग करते हैं आयुष्य के लिए करते हैं। कितनी लोग वो क्या, ये पंजाबी लोग क्या करते हैं तुम्हारा, वो करवा चौथ किसके लिए करते हैं? किसी हस्बैंड की डेथ नहीं हुई ऐसा हुआ है क्या? लंबी आयु के लिए करते हैं। देखो ये कितनी गड़बड़ी का गीता सुन रही है। नहीं नहीं मैंने माना भी नहीं, मुझे तो पता
है हम लोग, मैं जैन हूँ, मैं शादी से पहले जैन थी।
अच्छा,
हम लोग नहीं करते।
अच्छा,
तो मैं नहीं करती, मेरी शादी की बात ही नहीं किया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने जैनिज्म सुना था ना, उन लोगों जब महावीर भगवान आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि ये सब चीज गलत है, तो इसलिए नहीं करना थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बैठक समझाया कि जब गलत चीजें मैं नहीं करूँगी।
ये तो मैं पंजाबी और गुजराती बोलती हूँ, आई डोंट मीन दैट, तुमको पता नहीं, धीरे धीरे पता, जो गलत करते हैं ना वो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ,
गुजराती लोग भी वो पूर्णिमा करते हैं महीने में एक बार, यू नो करते हैं वो अग्यारह पूर्णिमा करे थे उनकी, हाँ लॉन्ग लाइफ के लिए, वट सावित्री का पूनम करते है ना, फिर 5 साल के बाद फिर उसको यू नो सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ स्त्रियाँ कर ही रही है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं, सब आदमी लोग कई मृत्यु हो ही जाती है। तो वो तो जो होती है वो धागे बांधने से, व्रत करने से, वो भगवान के नियम थोड़ी बदलने वाले हैं। और कभी तो मैंने सुना नहीं कि कोई भाई व्रत की, भाई ने व्रत किया अपने बच्चों के लिए या पत्नी के लिए, क्यों भाई लोग नहीं करते? चलो कम से कम आई एम हैप्पी, काका तो स्वीकार कर रहे हैं।
इसलिए जब मैं परेशानी करके आने वाला
नहीं करना,
आई वांट चेंज नेक्स्ट जन्म में।
बड़ी अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा है कि सच्चा ज्ञान हो तो झूठे नियमों का फिर यू नो पालन नहीं कराते हैं, दूसरों के पास भी नहीं करते, खुद भी नहीं करते हो और दूसरों को भी नहीं कराते। और यही होना चाहिए कि सब जो भी करो ना, गलत कुछ भी नहीं, समझ कर करो, ये विधियां है, ये उपवास है, ये सबका एक पर्पस था।
लेकिन ऐसा होता है डर के,
डर के भय के कारण
बहुत लोग करते हैं कि मैं ये करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और अच्छा होगा, कुटुंब में अच्छा होगा, ऐसा।
सबके ऊपर ही तो चल रहा है। अभी मुझे मेरे पास आते हैं ना लोग, तो वो तो सब कहीं भटक भटक कर आते हैं, इधर उधर थोड़ा सा मार खा के, तो वो बोलते हैं कि हमने तो यू नो इतना डर डर के सब किया है, हम करते थे इसीलिए कि हमको डर लगता था। एक भाई तो थे तो उन्होंने तो सारे कमरे में अलग 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 पिक्चर रख दिए थे कि भाई यू नो, और सबकी बोले सबकी आरती गाता हूँ तो 2 घंटा लगता है मुझे, डर लगता है मुझे,
ये भगवान नाराज हो जाएंगे, कभी ये भगवान नाराज हो जाएंगे, हंसी आती है। लेकिन हकीकत है तो भय के ऊपर ही तो हमारा रियली ये चल रहा है। लेकिन उनको पता लगा कि यार ये तो भगवान मेरे सामने खड़े हैं, भगवान के सामने मैं तो लड़ रहा में उनको ज्ञान था धर्मात्मा से भक्त से। तो भगवान देखो ऐसे वो पापी थे वहाँ भी ऐसे एक साथ भीष्म जैसे और भीष्म जैसे दे देते, ऐसे नहीं मानना कि सारा फैमिली ही ऐसा है। हिरण्य कश्यप के वहाँ कौन था, कौन था करना आपका धन्य हुआ। तो भगवान तो ऐसे नक्षत्र है ना कि एक नियम हम नहीं बना सकते हैं कि ब्राह्मण के घर ही जन्म जाएगा। अभी उनको लोग पूछते हैं कि हमको थोड़ा ज्योति से देखते हैं, लोगों को लगता है कि मैं ज्योति से देखते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी गीता में हो जाती है, मैं तो गीता के अनुसार कहती हूँ लेकिन उनको दिल की बात लगती है भाई है? तो वो कहते हैं आप ज्योति से देखते हैं तो मेरा क्या जानना है। तो बोलिए कभी भगवान कब आने वाले हैं, उनको भगवान कब आने वाले उनकी चिंता है। बोले हमने सुना है कहीं काठियावाड़ में या सौराष्ट्र में या कभी कुछ भ्रमण के आने वाले हैं। तो जैसे ज्ञान नहीं होता है तो हम ऐसे ही पटांग प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर देखो नाइन्थ चैप्टर में और नाइन्थ श्लोक में कहते हैं कि बहुत से सुरवीर और शस्त्र में जो प्रवीण है मतलब जो शस्त्र चलाने में होशियार है विचारदा है, सर्वे युद्ध विचारदा है। कहते हैं कि विचारदा यानी मतलब कुशल जो होते हैं एक्सपर्ट जो होते हैं, कि हमारी सेना में भी ऐसे लोग हैं जो युद्ध में बहुत ही कुशल है एक्सपर्ट है। ऐसे वैसे लोग मैंने इस समय नहीं अपनी सेना में रखे हैं, अपनी सेना में भी बहुत अच्छे अच्छे सूरवीर है। और फिर दूसरा एक शब्द अंडरलाइन करो मद अर्थ। देखो यहाँ पर मद अर्थ के पीछे अर्जुन का अभिमान दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं अपने गुरु को, गुरु के सामने ऐसी कभी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि आपको पता है कि मेरे लिए गुरु के पास से काम लेना है, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके जरिए अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाकर आप कहो मेरी तो इतनी डिग्री है, मैं तो इतना जानता हूँ, इतनी मेडिसिन के विषय में जानता हूँ, आप क्या जानते हो। इसके पीछे उसका अहंकार दिखाई, ये शब्द जैसे नाम कहा थे क्योंकि क्या दिखाई देता है मोह और ममता। वैसे मद अर्थ है यानी मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग मेरे लिए मरने को तैयार है, मतलब मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब मैं कितनी बड़ी व्यक्ति हूँ कि लोगों को अपने ध्यान की भी परवाह नहीं। तो मतलब मैं इतना तो मर्द अर्थ है। तो जब भगवान हमको भी कहते हैं कि तुम भी जब शब्दों का उपयोग करो तो थोड़ा ध्यान दो कि आपका अहंकार उसके पीछे तो नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा ना, नो मैटर आप कितना भी प्रयत्न करोगे वो आपके शब्दों में आ ही जाएगा। इसलिए अहंकार कब करने का प्रयत्न करो तो धीरे धीरे बाहर वही शब्द आएंगे जो अंतकरण में। तो मध्य अर्थ के पीछे जैसे लोग भी बातें करते हैं, मेरी ऑफिस में तो मेरे ऊपर ही सब आधार है ना, इन लोगों का काम मैं करता हूँ अकेले हाथ से, मेरे बिना तो मीटिंग होती ही नहीं है। तो वो तो तुम्हारा काम है, जो भी तुम कर रहे हो उसका पगार आपको नहीं मिल रहा है क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है। तो अब जब अपना कर्तव्य करते हो तो उसमें बड़ाई की क्या बात है। और अगर तुम्हारा कर्तव्य है और नहीं कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, तो भी बोलने की क्या बात है। तो निस्वार्थ सेवा नहीं कहेगी, तुमने तो फिर बोल दिया कि हमने इतना ज्यादा दो घंटा ज्यादा काम किया, तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बोलते हैं ना दो शब्दों से चले तो तीसरा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गलतियां ही हम करने वाले, गलती ही करेंगे अगर ज्ञान नहीं है तो हम भी जब बोलेंगे तो हमारे बोलने पर से नम्रता व्यक्त होनी चाहिए। लेकिन नम्रता अंदर होगी तो नम्रता व्यक्त होगी। हम भी बातें करते, मेरी पार्टी में तो इतने लोग थे, मैंने कहीं ना कहीं तो वो आ जाएगा, हमारा तो इंडिया में इतना बड़ा घर था, हमारा तो हमारा कुल की तो बात ही नहीं करना है। इन्हों एक अभी एक लेडी मिली थी तो कह देते हैं कि रजपूत, उनके उनके घराने में सब रजपूत होंगे सब। है ना, आप लोगों को तो उनका अपना होता है ईगो, हवेली रखते हैं ना उन लोग, हवेली रखते हैं क्या
ओके तो यहाँ पर जब आए अभी आए हैं तो स्थिति तो बड़ी खराब है, तो कहने लगे कि हमारे हस्बैंड जो है उनको तो ऐसी वैसी तो जॉब वो करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। तो अब हम वो हमारी प्रेस्टीज जो हमने बनाई रखी है कि हम राजपूत है ऐसे हैं तो उसमें से नीचे कैसे उतरे हम, अभी पता नहीं फादर की भी नहीं थी उनके फादर की भी हवेली नहीं होगी, पता नहीं कितने घराने के पहले उनका हाँ बचपन से उनका पालन हुआ होगा, लेकिन तो फिर अमेरिका में क्यों आए हो, अमेरिका में आए हो वो तो तुमको बुद्धि है कि नहीं, पालन का कहाँ सवाल आते हैं, हकीकत तुम्हारे सामने है। तो देखो अभी कर्जा ले रहे हैं, अभी इंडिया से तुम कर्जा लो कितने दिन चलेगा बता, अंत में क्या हुआ 5 साल तक कर्जा लेते रहे लेते रहे लेते रहे। अभी ये हाल है कि अभी टेबल साफ करती है भाई, रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तो अभी ये बात उनके उनके फ्रेंड्स भी उनको सलाह देते रहे कि भाई ये छोड़ो, ये छोड़ दो, तुम्हारा राजपूत पना यहाँ नहीं चलने वाला है, अभी अमेरिका में आए हो तो थोड़ा ही नीचे उतरना था पोजीशन में हस्बैंड को, लेकिन नहीं हम ऐसी जॉब नहीं करेंगे तो वो कहाँ चलने वाला है। ऐसा थोड़ा सोचा, अगर तुमको रियली राजपूत पना रखना ही था अपना तो इंडिया में ही रहते, तो वो दो बातें तो नहीं हो सकती है ना, दो घोड़े पर तो हम सवार नहीं कर सकते हैं। सो एनीवे यहाँ पर हमको ये देखना है कि और ये अभिमान और ईगो ऐसा है ना कि मनुष्य को कभी पता नहीं चलने देगा कि आप गलत कर रहे हो, उसकी एक्सपर्टी ऐसी है अभिमान की, मोह की भी, मोह में भी यही है कि मोह कभी पता नहीं लगेगा कि हमारे में इतना मोह है, अनलेस हम रियली सच्चे रास्ते पर चल रहे हो। तो अभिमान कभी भी मनुष्य को पता नहीं लगने देता है कि वो गलत कर रहा है। अभिमानी को देखो दुर्योधन को ये लग रहा है मैं तो सच्ची कर रहा हूँ, इसलिए अभिमान का हमको बहुत ध्यान, हमको यहाँ पर भगवान नम्र होने के लिए दैट मीन्स कह रहे हैं कि बहुत ध्यान रखना तुम दुखी हो जाओगे। किसी रावण जैसे, रावण लोग बूढ़े लोग कहते हैं ना कि रावण का भी अभिमान नहीं रहा तो हम हमारा कहाँ रहेगा, रावण के पास है उतना हमारे पास है, सच्ची बता कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो उसका नहीं रहा तो हमारा कहाँ रहने वाला, ये याद रखो। कोई क्वेश्चन है आप नेक्स्ट टाइम आगे किस लोग करेंगे। तो अब कौरव सेना पांडव सेना दोनों का वर्णन हो गया है और आगे किस लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे।